परिव्राजकचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमति डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोफेसर कौन फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तिवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद प्रथम अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। अध्याय का नाम द्रोण पुत्र को दंड। शौनकः उवाच सह वै निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षतः मुनिः कस्य वा बृहतीं एतां आत्म आरामहं समभ्यसत्। शौनक उवाच सवैनिवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीं एतां आत्मा रामः समभ्यसत्। शौनक उवाच सवैनिवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीं एतां आत्मा रामः समभ्यसत्। शौनक उवाच सवैनिवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीं एतां आत्मा रामः समभ्यसत्। उवाच स्त्री शौनक ने कहा सह वह वै निश्चय ही निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर निरतः सदैव लगा हुआ सर्वत्र सभी प्रकार से उपेक्षकः उदासीन मुनि मुनि कश्य किस कारण से वा अथवा बृहति विशाल एताम इस आत्म आरामः अपने आप में प्रसन्न रहने वाला समभ्यसत अध्ययन किया। अनुवाद मेरे पीछे बोली। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप से प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे विशाल साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी कर्मी की परिभाषा बताते हैं, कर्मी कैसे कहते हैं। हम तो जिसको देखो उससे कर्मी कह दे रहे हैं, किसी को भी हम कर्मी कहते हैं जो मंदिर से बाहर हैं कर्मी, लेकिन नहीं, सब लोग कर्मी भी नहीं हैं। कर्मी बनने की भी कुछ योग्यता है, आप समझे, कर्मी बनने की भी कुछ योग्यता है। और प्रभु जी क्या बताते हैं, कर्मी किसे कहते हैं, जो भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में स्थिर हैं वे कर्मी कहलाते हैं। भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में, इसका मतलब है कि शास्त्र के अनुसार कर्म करें इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वो कर्मी है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं तो वे क्या हैं, विकर्मी। अभी आजकल ज्यादा से ज्यादा जनता विकर्मी है, शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करते। स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में हैं जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या है, विकर्म। क्या है, विकर्म है, कर्म भी नहीं है। लेकिन आप लोग सोचते हो कभी कि वे जो है कर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं। कलयुग में अधिक से अधिक विकर्मी है। कर्मी कम से कम शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, वो सोचता है कि अगला जीवन भी है, अगले जीवन के लिए भी वो सोचता है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति करूं तो स्वर्ग की प्राप्ति करूं। लेकिन आजकल की शिक्षा कैसी है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, कोई जीवन ही नहीं है, ये है। तो आजकल के जो लोग हैं वो तो कर्मी भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, विकर्मी है। विकर्मी मतलब नरक की प्राप्ति करना, विकर्म से नरक की प्राप्ति होती है, तो नरक में जा रहे हैं लोग, है ना। कम से कम शास्त्र के अनुसार कर्म करो, अगला जीवन है, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। अब आत्माराम की प्रभुपाद जी परिभाषा बताते हैं कि आत्माराम क्या है। जो इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाए, निवृत्ति निरता, क्योंकि इसमें शब्द है निवृत्ति निरता, है ना, तो वो आत्माराम की परिभाषा है, निवृत्ति निरत, जो इंद्रिय भोग से विरक्त हो। और निवृत्ति निरत, क्योंकि शौनक मुनि ये प्रश्न कर रहे हैं या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में सुत गोस्वामी ने कहा, क्या कहा था, निवृत्ति निरतम मुनि सुखम अध्यापयामास, निवृत्ति निरतम मुनि, कि व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को यह श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और सुखदेव गोस्वामी क्या है, निवृत्ति निरत है, निवृत्ति परायण है, मतलब इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त है। तो निवृत्ति निरत, अभी बड़ा सुंदर प्रश्न है, स्वर्ण ऋषि का प्रश्न बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने देखो कैसे शब्द को पकड़ लिया, सूत गोस्वामी के शब्द को पकड़ लिया। सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी को ये जो भागवत संहिता का अध्ययन कराया व्यास जी ने, जबकि सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, निवृत्ति निरत है, वो इंद्रिय तृप्ति में तो बिल्कुल वो विरक्त है, बिल्कुल पूरी तरह से है कि नहीं। इसलिए जहां श्लोक समाप्त हो रहा है वहीं से यह श्लोक शुरू होता है, प्रश्न सब है निवृत्ति निरत, तो वो निवृत्ति निरत है, और निवृत्ति निरत है तो कैसे है, सर्वत्र उपेक्षको, सर्वत्र उपेक्षक। उपेक्षा का मतलब क्या है, उपेक्षा करते हैं, मतलब हर चीज का तिरस्कार करते हैं, ये नहीं चाहिए, इसको कहते हैं उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा शब्द है ना, अपेक्षा का मतलब चाहिए, उपेक्षा का मतलब नहीं चाहिए, उपेक्षा करते हैं, मतलब किसी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, उपेक्षा करते हैं, है नहीं, किसी चीज को देखना नहीं चाहते हैं, है ना। इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति किसी भी चीज को वो देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, भोगना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसमें कहा सर्वत्र उपेक्षक हो, हर जगह से वो उपेक्षक हैं, उदासीन हैं, है ना। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं अनपेक्षा सुचर दक्ष, भक्त के जो गुण हैं उनमें से कहा है कि जो अपेक्षा नहीं करता है, नहीं किसी ही चीज की आवश्यकता नहीं समझता है इस भौतिक संसार में, अनपेक्षा। और यहां पर सर्वत्र उपेक्षको, हर जगह हर चीज को वो उपेक्षा करते हैं, हर चीज की उपेक्षा करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहरे की तरह, गूंगे की तरह, पागल की तरह चलते हैं, घूमते हैं। सुखदेव गोस्वामी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो शरीर में वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं, शरीर में धूल भी लगी हुई है, और बिल्कुल पागल की तरह जो है ना वो भ्रमण करते हैं, किसी एक स्थान में ठहरते नहीं हैं, वृक्षों के जो है ना पत्ते खा करके रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी की ऐसी स्थिति थी, और व्यास जी को जो है ना चिंता है कि सबसे पहले वो किस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत दें। अभी तो श्रीमद् भागवत सबको प्राप्त हो रही है, हम सब लोगों को प्राप्त हो रही है ना, लेकिन व्यास जी सबसे पहले सोच रहे हैं कि इसका जो है अगर उद्घाटन किया जाए, इनागुरेट है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कोई महत्वपूर्ण भवन होता है ना, तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को ले जाया जाता है कि नहीं, है कि नहीं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से उस भवन का क्या कराते हैं, उद्घाटन कराते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का भी उद्घाटन जो है व्यास जी चाहते हैं किसके द्वारा कराना, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कराना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं सुखदेव गोस्वामी। और समस्या ये है कि सुखदेव गोस्वामी हर चीज को प्रपंच समझ करके कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं, कोई अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, सर्वत्र उपेक्षको मुनि। और मुनि का मतलब मुनि के कई अर्थ हैं, तो एक अर्थ ये भी है कि वो मौन रहते हैं, बोलते भी नहीं हैं सुखदेव गोस्वामी, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो है निष्ठा किसमें है, निर्विशेष ब्रह्म में। सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी हैं, तो निर्विशेषवादी भी उन्नति करते करते कहां तक पहुंच जाता है, निर्ग्रंथ अवस्था में, अगले श्लोक में आएगा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब है कर्म की ग्रंथि को वो काट डालता है, कर्म बंधन से छूट जाता है, निर्ग्रंथ का ये मतलब है। और निर्ग्रंथ का मतलब ये भी है जो ग्रंथों का अध्ययन ना करे। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, वो दोनों प्रकार से निर्ग्रंथ थे सुखदेव गोस्वामी, ना तो
उनको कर्म की ग्रंथि थी, यानी कर्म का बंधन नहीं था, और दूसरा निर्ग्रंथ का मतलब वो किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहे थे। तो इस प्रश्न से जो है श्रीमद् भागवत की महिमा का पता चलता है कि श्रीमद् भागवत की महिमा कितनी है, कि ऐसे व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सर्वत्र उपेक्षको मुनि, उपेक्षा करते हैं। तो मोहन रूप प्रभु कल ही बता रहे थे, परसों उन्होंने क्लास दिया था, तो बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी की ऐसी स्थिति है और व्यास जी इनको पढ़ाना चाहते हैं और सुखदेव गोस्वामी आते नहीं हैं। देखो कैसी स्थिति है, व्यास जी श्रीमद् भागवत पढ़ाना चाहते हैं और सुखदेव गोस्वामी पढ़ना नहीं चाहते हैं, और व्यास जी चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को ही सबसे पहले पढ़ाएं और जितने शिष्य हैं उनके किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं श्रीमद् भागवत। जो दूसरे शिष्य हैं उनको वेदों के दूसरे दूसरे विभाग का अध्ययन कराया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन करा रहे हैं। तो फिर उनके कुछ शिष्य हैं जो उनसे पूछते हैं व्यास जी से कि हम जंगल में जाते हैं समाधान लेने के लिए किसी काम से, तो हमें हिंसक जंतुओं का भय रहता है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो व्यास जी कहते हैं कि तुम एक मंत्र का उच्चारण किया करो, अपने शिष्यों को कहा कि तुम एक मंत्र का उच्चारण किया करो। और व्यास जी का जो है ना इसमें दूसरा इरादा क्या है, सुखदेव गोस्वामी को भी बुलाना, सुखदेव गोस्वामी को वो आकर्षित करना चाहते हैं, है ना। तो ये तो एक जो उन्होंने मंत्र बताया श्रीमद् भागवत का वो श्लोक था, तो एक छोटी सी बात है इस मंत्र से कि हिंसक जंतुओं से भय नहीं रहता, लेकिन मुख्य बात ये थी जो व्यास जी के जो हृदय में थी वो ये थी कि इस श्लोक से सुखदेव गोस्वामी को खींचा जाए। तो वो श्लोक था श्रीमद् भागवत दसवें स्कंद का, बरहा पीडम नटवर वकुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं व्यजयंतीं च मालां रंध्रान वीरवरधर सुधया ओरियन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुपद्रमणम प्राविशन गीत कीर्ति। कि भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं, हरे कृष्णा, कृपा करके आंखें खोलिए, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोगों की आंखें बंद हैं खुली हैं वो मैं देख रहा हूं, कृपा करके आंखें खोलिए। हाँ, तो ये जो श्लोक था तो उनके शिष्य पढ़ते थे तो उनको सर्प और शेर जैसे हिंसक जंतुओं से कोई भय नहीं रहता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो पुत्र है अगर इसको सुनता है और तुम्हारे पास आता है और कुछ पूछे तो कुछ बताना नहीं, सीधे मेरे पास भाग के आ जाना। तो व्यास जी का ये इरादा था। तो हुआ ये कि सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में थे, लेकिन जैसे ये श्लोक कानों में पड़ता है उनके तो तुरंत ही उनका जो निर्विशेष ब्रह्म का आनंद है वो फीका पड़ गया, और भगवान की लीला का जो आनंद है वो इतना तीव्र था कि निर्विशेष ब्रह्म का जो आनंद है वो बिल्कुल फीका हो गया, और वो भागे कि कौन बोल रहा है श्लोक। तो जैसे व्यास जी की आज्ञा थी उनका शिष्य भाग करके व्यास जी के पास आया, तो सुखदेव गोस्वामी भी आ गए व्यास जी के पास, और व्यास जी कहते हैं बेटा बैठो बैठो, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पिताजी वो श्लोक हमें याद सिखा दीजिए। तो व्यास जी कहते हैं कि बेटा बैठो अध्ययन करो, ऐसे 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने पूरे भागवत का अध्ययन किया, एक श्लोक से उनका जो निर्विशेष ब्रह्म का जो सुख है वो फीका पड़ गया। तो यहां पर सर्वत्र उपेक्षको बताया गया है कि सर्वत्र वो उपेक्षा करते हैं, हर चीज की उपेक्षा करते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे जन्म ही लेते हैं तो ये भी बताया गया है कि अपना वो संस्कार नहीं कराया उन्होंने, जो संस्कार होता है ना जन्म के समय क्या होता है जन्म संस्कार, तो वो उन्होंने कराया नहीं, जैसे ही पैदा हुए वैसे वो चलने लगे और अपने पिता का मुंह नहीं देखते हैं, माता का भी मुंह नहीं देखते हैं और चले जा रहे हैं जंगल की तरफ। और व्यास जी उनको पीछे से पुकारते हैं पुत्र पुत्र कह करके, तो वृक्षों में ही प्रतिध्वनि हो रही है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं अपने पिता को। तो इस तरह से जो है सर्वत्र उपेक्षको, सर्वत्र वो उपेक्षा करते हैं सुखदेव गोस्वामी। और फिर सोनक जी पूछते हैं कश्यवा बृहती एताम आत्मा रामात्मा फिसर कश्यवा, कश्य का मतलब कश्य है तो किस कारण से, और वा का मतलब अथवा, अथवा का मतलब क्या है कि सुखदेव गोस्वामी को आवश्यकता नहीं थी शायद इस ग्रंथ का अध्ययन करने की शायद आवश्यकता नहीं थी, तो वा का मतलब अथवा, अथवा किस कारण से उन्होंने अध्ययन किया, शायद किसी ने उनको जोर दिया हो, किसी ने उन पर दबाव डाला हो, शायद सोनक ऋषि का ही प्रश्न है कि कभी कभी दबाव डाला जाता है, जैसे प्रेमव्रत महाराज थे, जैसे प्रेमव्रत महाराज थे तो वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे नारद जी के द्वारा, और उनके जो पिता मनु थे वो चाहते थे कि राज्य करें, तो मनु जी फिर अपने पिता ब्रह्मा जी को लेके आए और ब्रह्मा जी ने फिर दबाव डाला, तो प्रियव्रत अपने पिता की अगर आज्ञा का उल्लंघन कर देते तो इसलिए मनु जो है अपने पिता को लेके आए और प्रियव्रत पर जो है दबाव डाला, जैसे फिर उन्होंने राज्य किया और गृहस्थ बने महाराज प्रियव्रत। तो इस तरह से वा का मतलब अथवा किस हेतु से उन्होंने इस विशाल बहतीम संहिताम समभिषद इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया सुखदेव को समझ। तो अगले श्लोक में आएगा निर्ग्रंथ था कि मतलब वो निर्ग्रंथ है सुखदेव गोस्वामी, ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहते फिर इतना विशाल, आप जानते हैं छोटा ग्रंथ थोड़ी है श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक है, तो क्यों अध्ययन किया। मैं जैसे अर्जुन भी हैं है ना, तो अर्जुन भी ये सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरे ऊपर कुछ दबाव डाल रहे हैं युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने प्रश्न किया ना गीता के तीसरे अध्याय में, गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणे घोरे माम नियोजित केशव, जी अगर आप सोचते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म की तुलना में तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो अर्जुन का भी कुछ इसी प्रकार का आरोप है भगवान के ऊपर कि मुझे क्यों लगाते हैं। तो यहां पर वा का मतलब यही है अथवा, सुखदेव गोस्वामी को आवश्यकता नहीं थी भागवत का अध्ययन करने की, तो उनके ऊपर शायद किसी ने जोर दिया हो दबाव डाला हो इसलिए भागवत अध्ययन किया है ना। तो यहां प्रभुपाद आगे लिखते हैं तात्पर्य में, ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्म का अर्थ है स्वा तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति परम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ बदल सकता है। अतः कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं, यही सर्वत्र उपेक्षा करते हैं जिसमें कहा ना, उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य अन्य मनस्क रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उन्हें कोई खुशी नहीं होती है। ये जो संसारिक सुख है वो मिल जाए तो उनको कोई खुशी नहीं रहती है। चले सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मा रामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, स्नातकोत्तर अध्ययन है श्रीमद् भागवत। स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है ना। ग्रेजुएट ग्रेजुएट का मतलब है जो आत्माराम है, आत्म साक्षात्कार ये ग्रेजुएशन कहलाता है। आध्यात्मिक ग्रेजुएट वो व्यक्ति है जो आत्माराम हो जाए, भौतिक भोगों से विरक्त हो जाए, आत्म साक्षात्कार के पद पर आ जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म, ब्रह्मभूत अवस्था पर जो व्यक्ति आ जाए तो ग्रेजुएट है प्रभुपाद जी के शब्दों में, और उनके लिए जो है ना ये श्रीमद् भागवत है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है कि नहीं। तो यहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम जो है कुछ और भी चर्चा करेंगे इस श्लोक पर। आत्मा राम जो है शब्द भगवद गीता में आता है, आत्माराम शब्द तो नहीं आता लेकिन इसकी व्याख्या आती है गीता में, गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17। श्लोक संख्या 17 है तीसरे अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मा राम की जो परिभाषा है वो क्या है, तीन बार भगवान आत्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा राम आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मा में जो आनंद ले, और आत्मतृप्तः आत्मा में ही प्रकाशित, और आत्मनेव च संतुष्टः और आत्मा में ही पूर्णतया संतुष्ट, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और इस श्लोक में भी यही प्रश्न है, इस श्लोक में भी यही प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि फिर उनको क्या आवश्यकता थी पढ़ने की, इतना अध्ययन करके कष्ट उठाने की, जब वो आत्माराम है और भगवान कह रहे हैं तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। जो आत्माराम है, अब आत्मा के जो है कई अर्थ हैं, आत्मा का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म भी हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है और क्या, और भगवान भी आत्मा के, तो आत्मा राम के स्तर मतलब अलग अलग हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म में आनंद ले रहा है तो भी आत्मा राम है, कोई व्यक्ति परमात्मा में आनंद ले रहा है तो भी आत्मा राम है, कोई भगवान में आनंद ले रहा है तो भी आत्मा राम है ना। तो भगवान क्या कहते हैं उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ये भौतिक कर्तव्य नहीं होते उसके लिए और फिर 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थोना कृतेन है कश्चन चास सर्वभूतेषु कस्य तथे पिपासय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है और ना करने का भी कोई कारण नहीं होता। किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं है उसको, जैसे इसमें कहा सर्वत्र उपेक्षक को, वो किसी की अपेक्षा नहीं करते। जो आत्माराम है वो उनको किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है कि इनको खुश किया जाए उनको खुश किया जाए, वो किसी को खुश करने की उनको जरूरत नहीं होती। ये फिर भी रूपा जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, कृष्ण भावनावृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। और फिर भगवान जनक आदि राजाओं का उदाहरण दे रहे हैं, जनक आदि राजा आत्माराम है और वो कर्म करते राज्य करते हैं। ये आत्माराम पर ही जो है ना एक काफी भगवान जो है चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कर्मणे भी संसिद्धि मास्तदा जनक आदय, जनक आदि जो राजा हैं वो आत्माराम थे, है ना। लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि, लोक शिक्षा को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। तो आत्माराम कर्म करते हैं किस लिए, अपने लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए कि ऐसे काम करो। भगवान कह रहे हैं जनक आदि जो राजा लोग थे वो जो कर्म कर रहे थे वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, दूसरों को इसमें लगाने के लिए, उनके कल्याण के लिए कर्म कर रहे थे। संपर्शन कर तुम्हारा चाहिए, क्यों, यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करे वैसे सामान्य लोग भी आचरण करते हैं। सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वो जो प्रमाणित करे तो लोग उसी का ही अनुवर्तन करते हैं, अनुगमन करते हैं, है ना। इसलिए जैसे कि प्रभुपाद जी भी आत्माराम थे, उन्हें कोई सोलह माला करने की जरूरत नहीं थी, है ना, ये सोलह माला जाप करते थे, है कि नहीं। छह गोस्वामी भी संख्या पूर्वक नाम गानन, वो भी आत्माराम थे, उनको किसी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं थी, तो भी संख्या पूर्वक प्रणाम करना है? और नाम जाप करना, है कि नहीं, सब नियमों का पालन करते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्माराम जो है फिर भी कर्म करता है संसार में लोगों को शिक्षा देने के लिए। फिर भगवान अपना भी उदाहरण दे रहे हैं, भगवान कृष्ण भी स्वयं आत्माराम है। भगवान कृष्ण क्या है? आत्माराम है। भगवान कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन, मेरे लिए तीन लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण को आत्माराम कहा जाता है तो वहां पर आत्मा का अर्थ क्या है? भगवान को जब आत्माराम कहा जाता है, कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, तो यहां पर आत्मा का क्या अर्थ है? आत्मा के कई अर्थ हैं, लेकिन जब कृष्ण को आत्माराम कहा जाता है तो आत्मा का क्या अर्थ है? सबकी आत्मा, वो तो वो खुद ही हैं, वो खुद ही हैं, और उनकी जिम्मेदारी मेरी आएगी कि मैंने इनका नाश किया है। इसलिए भगवान कहते हैं उपहन्याम वहां पर जाए, मैं ही इनका नाश करने वाला बनूंगा। आप समझे? तो समाज के बीच में आत्माराम की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन तो भी वो कर्तव्य करता है उनके लिए, क्योंकि उनकी देखा देखी बाकी लोग करने वाले हैं, श्रेष्ठ है वो। इसलिए आगे भगवान कहते हैं सत्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत है। मूर्ख लोग जो है आसक्त हैं तो कर्म में जिस प्रकार से लगे हैं, कुर्यात् विद्वांस आसक्त श्री कृष्ण लोक समय, जो विद्वान है उसी प्रकार से कर्म करे, लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करें। चिकित्सु लोक संग्रह, लोगों की लोगों को शिक्षा देने के लिए वो अनासक्त भाव से वही कर्म करता है। इस तरह से भगवान जो है उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। न बुद्धि वेदम जनेत ज्ञानाम कर्म संज्ञाम, जो अज्ञानी है कर्म में आसक्त है उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करो कि सब कर्म छोड़ दें वो भी और आत्माराम की तरह हो जाए। नहीं, जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर, वो सब कर्मों में उनको लगाए और स्वयं करता हुआ उनको कर्म में लगाए। तो ये मतलब है कि जिनके अंदर भोगों की इच्छा है तो वह आत्माराम की नकल ना करें कि वे भी सब कर्मों को त्याग दें, है ना। अब एक लेख मैंने लिखा है, श्री भगवान ने कहा, ये भाग 39वां है और गीता के पहले अध्याय की 45वीं श्लोक पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। इसमें इंद्रिया राम और आत्माराम की कुछ व्याख्या की गई है, क्योंकि भगवान ने गीता में इंद्रिया राम शब्द का प्रयोग किया है जो आत्माराम का क्या है? उल्टा। इंद्रिया राम शब्द है गीता में कहीं? है अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, जो इंद्रिया राम है वो व्यर्थ ही जिंदा रहता है। तो इसमें मैंने जो लिखा है, अर्जुन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई पाप नहीं करना चाहते हैं, जबकि अनेक लोग ऐसे हैं कि वे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करते हैं तथा उनके जीवन में पाप बढ़ता जाता है, उनका जीवन बेकार है। अच्छा है यदि वे मर जाएं, क्योंकि मरने से उनके पाप कर्म बंद हो जाएंगे। वास्तव में धृतराष्ट्र के पुत्रों का मरना अच्छा है, क्योंकि वे अपने जीवन में पापों को बढ़ाते जा रहे हैं। गीता के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, अर्थात ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अघायु और इंद्रिया राम। अघायु दो शब्दों से मिलकर बना है, अघ और आयु, अत का अर्थ है पाप और आयु का अर्थ है जीवन। इस प्रकार अघायु का अर्थ हुआ पाप का जीवन। तो भगवान कहते हैं कि वह जितना अधिक आयु बिताता है उतना अधिक पापों को जोड़ता जाता है। अघायु जितनी अधिक उसकी आयु बढ़ती जाती है उतना अधिक उसके पापों का भंडार भी बढ़ता जाता है। अब हम दूसरे शब्द इंद्रियाराम पर विचार करेंगे। इंद्रियाराम के विपरीत आत्माराम होता है। आत्माराम की व्याख्या भगवान इसके अगले श्लोक में करते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में ही तृप्ति वाला है और आत्मा में ही संतुष्टि वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यदि इसी प्रकार से देखा जाए तो इंद्रियाराम शब्द की भी व्याख्या की जा सकती है। जो व्यक्ति इंद्रियों में ही रति चाहता है, इंद्रियों में ही तृप्ति चाहता है तथा इंद्रियों में ही संतुष्टि चाहता है, अर्थात वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों की ही सेवा में लगा हुआ है। क्योंकि उसकी इंद्रियां काम शत्रु के अधीन है, इसलिए उसकी इंद्रियां भी उसकी शत्रु बन जाती हैं तथा उससे पाप कर्म करवाती हैं। दूसरी ओर आत्मा का अर्थ है श्री कृष्ण। तो आत्मा राम का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। क्योंकि श्री कृष्ण सभी जीवों के सुहृद हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करने वाले को श्री कृष्ण सभी पापों से छुड़ाते हैं। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए अर्जुन आत्माराम है, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार है। जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र अपने इंद्रियों की सेवा में लगे हुए इंद्रियाराम है, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। फिर भी जो श्री कृष्ण भक्त हैं उनके लिए जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में मृत्यु उनके लिए वस्त्र परिवर्तन के समान शरीर का परिवर्तन होती है, उनके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कृष्ण के भक्त हैं उनका शरीर बदलता है, उनका कार्य बदलता नहीं है, कार्य वही चलता रहता है। भक्तों को मृत्यु की कोई चिंता नहीं होती, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि वे प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की सेवा करें। तो ये कुछ व्याख्या हमने करी है। अब प्रश्नोत्तर में जरूर चाहूंगा तो आप लोग प्रश्नोत्तर करें या मैं प्रश्न करूं। आपका प्रश्न हो। मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। आपका प्रश्न ये है कि जो अघायु हैं जितना अधिक उनका जीवन बीतता जाता है उतना अधिक उनके पाप बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वो इंद्रियाराम, जो इंद्रियाराम है वो उनको विकर्मी कहा गया है। शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मनमाने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, है ना। तो जितना अधिक उनका जीवन बीतता जाता है उतना अधिक उनके पाप बढ़ते जाते हैं। मृत्यु के द्वारा अगर वो मर जाएं तो उनका जो है वो पाप कर्म बंद हो जाएगा, है ना। इसलिए अच्छा है जितनी जल्दी वो मर जाएं उतनी अच्छा है, उनकी मृत्यु हो जाए वो अच्छा है। तो जो है ना, एक ये भी कारण है युद्ध का कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना कितना पाप करते जा रहे हैं, है ना। तो उनकी मृत्यु से वो पाप रुक जाएगा। उनको सुधारा जाएगा। उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा जल्दी, उनको सुधारा जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब वो नहीं सुधर रहे हैं, भगवान ने उनको कितना प्रयास किया, वो भगवान का भी अपराध कर रहे हैं, फिर भगवान को ही बंदी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं। तो जो नहीं सुधरते हैं तो फिर यमराज सुधारते हैं उनको, यमराज के हाथों सुधारे जाते हैं। एक सुधारने का अलग डिपार्टमेंट है यमराज का, तो उनके पास जाते हैं सुधारने के लिए। और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि आत्मा राम जो है, अगर सुखदेव गोस्वामी हैं और आत्मा राम का मतलब कृष्ण की सेवा करने वाला। नहीं, मैंने बताया आत्मा राम के कई स्तर होते हैं। तो एक आत्मा राम उसको भी है जो ब्रह्मानंद में लीन रहे, निर्विशेष ब्रह्म में लीन रहे, है ना, निर्विशेषवादी। तो सुखदेव गोस्वामी पहले निर्विशेषवादी थे, चार कुमार भी निर्विशेषवादी थे, फिर बाद में भक्ति में आए वो, तो दूसरे प्रकार के आत्माराम बने वो। आप समझ रहे हैं। इसमें भी तो क्या है कि उन्नति होती है, आत्मारामों की भी उन्नति है। चार कुमार भी निर्विशेषवादी से फिर भक्त बने, सुखदेव गोस्वामी भी निर्विशेषवादी से भक्त बने, और जब तक वो निर्विशेषवादी थे तब तक वो जो है ना कुछ सुनते थे ना कुछ बोलते थे, है ना, आप सुन रहे हैं। वो गर्भ के अंदर भी जब रहे तो उनको भय था, माया से भय था, इसलिए गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। 12 साल तक वो अपनी माता के गर्भ में रहे, और ब्यास जी कहते हैं कि बेटा दर्शन दो, जन्म लो, तो कहते हैं नहीं पिता, मैं जन्म नहीं लूंगा, अगर जन्म लूंगा तो फिर यही सब बंधन मेरे ऊपर आ जाएंगे, ये माता है ये पिता है इनके लिए उनके लिए सब कर्तव्य मेरे बन जाएंगे। तो पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, तुम जन्म लो, अपना दर्शन दो, और फिर तुम्हारी जो इच्छा, घर में रहो या जंगल में जाओ, तुम्हारी इच्छा, जन्म लो। तो जैसे जन्म लिया वो तुरंत ही पिता का मुंह नहीं देखते, माता का मुंह नहीं देखते, और सीधे जाते हैं जंगल में। और वहां भी अब ब्यास जी बात करें तो कैसे बात करें, वो सुनना नहीं चाहते कुछ बात। तो उन्होंने फिर ऐसी ब्यास जी ने युक्ति बनाई कि अपने शिष्य को कहा कि जोर जोर से तुम ये मंत्र बोला करो। अब वो धीरे धीरे भी मंत्र बोल सकते थे अपनी रक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने कहा तुम जोर जोर से इस मंत्र को बोला करो। तो जोर जोर से मंत्र बोला तो सुखदेव के कानों में जब वो मंत्र गया या भागवत का श्लोक गया तो उनका जो निर्विशेष ब्रह्म का जो आनंद है वो फीका पड़ गया, है ना। तो फिर वो दूसरे प्रकार के आत्माराम बने, जो भगवान के श्रवण कीर्तन भगवान के गुणगान में जो आनंद ले। तो ये जो है मतलब आकर्षण है भगवान का। ऐसे मधुसूदन सरस्वती भी जो है ना एक श्लोक लिखते हैं, वो पहले निर्विशेषवादी थे तो वो एक श्लोक लिखते हैं, हालांकि वो देखने में कृष्ण की निंदा लग रही है, लेकिन वो कृष्ण की प्रशंसा है, कृष्ण में कितना आकर्षण है। तो वो श्लोक कैसा है, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, शुरू में क्या है वो श्लोक, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बेटेन। तो उसमें वो ये बताते हैं कि हमने जो है इस आत्मज्ञान की साधना के द्वारा अपना स्वराज्य प्राप्त कर लिया। अद्वैत वीथि पथिक है रूपाश्य, अद्वैत मार्ग के जो पथिक हैं वो हमारी उपासना करते थे, हम गुरु बने थे, अद्वैतवाद के हम गुरु बने हुए थे, सब उपासना करते थे, और हमने स्वराज्य सिंहासन प्राप्त कर लिया है। लेकिन सठे ने केना पिपयम हटेन, लेकिन कोई गोपी, गोपी का जो है ना एक बालक है, गोप वधु का एक बालक है जो कि इतना सट है, इतना दुष्ट है कि उसने हमको उस सिंहासन से उतार दिया। सठे ने केना पिपयम हटेन, हट पूर्वक हमको उस सिंहासन से उतार दिया और दासी कृता अपना दास बना लिया है, हम उसके दास बन गए। तो मतलब भगवान कृष्ण में इतना आकर्षण है, और वो जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान के गुण हैं। तो फिर ये जो है मतलब परमहंसों के लिए जो श्रीमद् भागवत है ये क्या बन जाता है, निवृत्त तर से रूपगीय मानात, आनंद का एक स्रोत है श्रीमद् भागवत। तो भगवान के गुणों में ऐसा आकर्षण है, वो आगे सूत जी उत्तर देंगे, यथम भूत गुण हरि, भगवान में ऐसे गुण हैं आत्मा राम को आकर्षित करते हैं। तो भगवान के जो 64 गुण हैं उनमें एक गुण ये भी आत्मा राम गण आकर्षित्व, आत्मा रामों को आकर्षित करते हैं। तो आत्मा राम जैसे 4 कुमार थे वो भी आत्मा राम थे, लेकिन निर्विशेषवादी थे, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को सूंघ करके वो जो है निर्विशेष जो सुख है वो त्याग देते हैं और भक्त बन जाते हैं। और फिर वो कहते हैं हमें नरक में भी हमें अगर जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं, हमको ये सुख मिलना चाहिए। कौन सा सुख मिलना चाहिए, आपके चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध मिलनी चाहिए, हमें नरक में भेज दो, हमें कोई चिंता नहीं। और प्रहलाद जी भी आत्मा राम है, वो कहते हैं नैवो दुजे पर दुरत्यय वैतरणी तद वीर गायन महामृत मग्न चित्त, दुरत्यय वैतरणी, वैतरणी मतलब नरक, नरक में जाने से भी मुझे जो है ना कोई भय नहीं है। तो वीर गायन महामृत मग्न चित्त, आपका जो गुणगान है ये महाअमृत है, इसमें मेरा चित्त मग्न है तो मुझे नरक में जाने से भी कोई भय नहीं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी निर्भय हो गए, वो माया से डरते थे, जब तक निर्विशेषवादी थे तब तक माया से डरते थे, लेकिन फिर वो जब निर्भय हो गए तो वो जो है ना हर जगह चलते हैं, हर जगह घूमते हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वो चारण करते रहे हमेशा। और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रश्न है, भगवान कर्म क्यों करते हैं? भगवान यहां गीता में जो बता रहे हैं कि वो कर्म कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो वो स्वयं जो है ना ऐसे आचरण करते हैं, ये गृहस्थ जीवन के सब आचरण करते हैं भगवान। सवेरे उठना है कि नहीं, स्नान करना है ना, और जप करना है, और भी जो पाठ करना है, ब्राह्मणों को दान देना है कि नहीं। तो सब आचरण जो भगवान कर रहे हैं तो वो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। आपका प्रश्न? इनका प्रश्न है कि सुखदेव को समय पहले श्रीमद भागवत शिव जी के मुख से सुना था। ऐसा है कि कई पुराणों में कई प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन हम जो है उन्हीं कथाओं को लें जो इससे संगत बैठे हैं, क्योंकि बात यह है कि कई कल्पों की जो कथाएं हैं वो कई पुराणों में लिखी हैं, और ये पता नहीं चलता कि किस कल्प की कौन सी कथा है। तो इसलिए जब यहाँ पर ये प्रश्न उठाया कि उन्होंने क्यों अध्ययन किया श्रीमद् भागवत का, और वो जो है ना नहीं करना चाहते थे, और बाद में जब उनको आनंद मिला कृष्ण के लीलाओं का तो उन्होंने अध्ययन किया, तो फिर यही मानना चाहिए, ठीक है ना। कहीं पर यह भी बताया गया है कि वो राधा रानी के हाथ के लीला सुख हैं, उनके हाथ के तोता हैं सुखदेव गोस्वामी। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो परस्पर विरोधी हो जाती हैं बहुत सी बातें। तो इसमें फिर यही समझना चाहिए कि वो कल्प भेद से ये सब जो है ना सत्य हैं ये बातें, तो हम नहीं जानते किस कल्प की कौन सी घटना है। और कोई प्रश्न किसी का? आपका निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेषवादी का मतलब क्या है? भगवान जो परम सत्य है ना, उसके तीन स्तर बताए गए ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म का मतलब है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है ना। तो कोई व्यक्ति उसी को परम सत्य समझता है तो वो जो है ना चेतन है, चेतन शक्ति है भगवान की, सर्वत्र व्याप्त है। तो कोई व्यक्ति उसी में ही अपना मन लगाता है और आनंद प्राप्त करता है और भोगों से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, तो निर्विशेषवादी कहलाता है वो। और फिर परमात्मावादी होता है, उससे भी ऊपर होता है, जो परमात्मा स्वरूप को समझता है, जो हृदय में विराजमान है परमात्मा। लेकिन फिर भागवत उसके ऊपर होते हैं, जो कि भगवान को जानते हैं, परम सत्य का अंतिम रूप भगवान है। और जो भगवान को जान लेता है तो वो ब्रह्म ज्योति को और परमात्मा को अपने आप जान लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं जानने में। आपका प्रश्न? सुखदेव गोस्वामी इस भौतिक संसार में कितने साल थे? सुखदेव गोस्वामी अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी हैं। आपका प्रश्न? कैसे रहे सुखदेव गोस्वामी 12 साल गर्भ में रहे, कैसे रहे? वो बहुत बड़े योगी थे। और भी घटनाएं ऐसी कि कुछ लोग और भी रहे, 100 साल गर्भ में रहे माँ के, जानते हो किस कौन कौन रहे 100 साल तक गर्भ में रहे? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष भी। दिति ने उनको जन्म नहीं दिया, दोनों पुत्रों को। जब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष गर्भ में आए दिति के, और जैसे गर्भ बढ़ने लगा तो अंधकार फैल रहा था, सब दिशाओं में अंधकार फैल रहा था, ये अजीब है। गर्भ से अंधकार फैल, जैसे कृष्ण गर्भ में थे देवकी के, तो गर्भ तो देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, ऐसे दिति के शरीर से अंधकार निकल रहा था। तो दिति ने जन्म नहीं दिया, 100 साल तक जन्म नहीं दिया इन पुत्रों को, यही सोच करके कि ये तो अभी अगर गर्भ के अंदर से ही अगर अंधकार पैदा कर रहे हैं तो पैदा होने पर क्या नहीं करेंगे। तो 100 साल तक जन्म नहीं दिया, लेकिन आखिर जन्म तो देना ही पड़ा, लेकिन दिति ने जन्म नहीं दिया। कयाधु ने प्रहलाद को जन्म नहीं दिया 100 साल तक, 100 साल तक प्रहलाद जी भी, और भी दिव्य वर्ष, 100 दिव्य वर्षों तक, क्योंकि कयाधु को भय था। किसका भय था? प्रहलाद को जन्म नहीं दिया उसने 100 साल तक, किसका भय था? इंद्र का, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है। तो जब तक उसका पति वापस ना आए तब तक वो जो है पुत्र को जन्म नहीं देना चाहिए थी, क्योंकि इंद्र कयाधु को कैद करके ले जा रहा था इंद्रलोक में। नारद जी, ये क्या कर रहे हो तुम, पराई स्त्री का स्पर्श कर रहे हो, ये कैसे? तो गलत है। इंद्र कहते नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, मैं इस स्त्री को कुछ नहीं करूंगा, इसके गर्भ में जो बालक है उसके जन्म की प्रतीक्षा करूंगा, और जैसे जन्म लेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, सांप का सपेलुआ भी छोड़ा नहीं जाता है। तो नारद जी कहते हैं तुम मूर्ख हो, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, संसार की कोई शक्ति उसको छू नहीं सकती। अब तुम अपना भला चाहते हो तो इस माता की परिक्रमा करो, जाओ इस अपने स्थान में। तो नारद जी ने समझाया, इंद्र डर गया, कयाधु का डर दूर नहीं हुआ, कयाधु नहीं जानती अध्यात्म ज्ञान को, तो उसको इंद्र का डर है कि वो जन्म देगी तो इंद्र किसी भी रूप में आके मार सकता है। इंद्र के पास सब तरकीबें होती हैं, है ना, इंद्र किसी कोई भी रूप धारण कर सकता है, छोटा रूप धारण कर सकता है, बड़ा रूप मार सकता है, इसलिए उसने जन्म लिए। और नारद जी उस बालक को ही उपदेश देते रहे श्रीमद् भागवत का 100 साल तक, और कयाधु के बहाने, कयाधु नहीं समझ रही थी, वो बालक समझ रहा था। तो ऐसे उदाहरण है, और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा मैं प्रश्न करूं, थोड़ा सा मैं प्रश्न करूं। सर्वत्र उपेक्षको, इसमें जो लिखा है शब्द है सर्वत्र उपेक्षको, इसका अर्थ क्या है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति से उपेक्षा, सर्वत्र उपेक्षा। तो सुखदेव गोस्वामी इसकी व्याख्या में हमने क्या बताया, सुखदेव गोस्वामी कैसे रहते हैं, सर्वत्र उपेक्षा का मतलब क्या है, यहाँ पर किस प्रकार रहते हैं, वो विरक्त हैं, तो क्या उनकी चेष्टाएं कैसी, बहरे गूंगे पागल की तरह है, मूर्ख की तरह रहते हैं, और भी कोई उदाहरण ऐसा किसी का? जड़ भरत, हाँ बहरे गूंगे की तरह रहते हैं। और भक्तों को भी कभी रहना पड़ता है, इससे बहरा बनना पड़ता है, गूंगा बनना पड़ता है। अगर आप प्रचार में जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको हंसी मजाक करता है, छेड़छाड़ करता है, तो क्या करोगे आप? बहरे गूंगे बनना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं? तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर उनकी हर बात सुनोगे, हर बात का जवाब दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, इसलिए आपको गूंगा बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा, है ना, ये जरूरी है। सर्वत्र उपेक्षको, और मुनि, मुनि शब्द के कई अर्थ में से एक अर्थ क्या है जो यहां पर लागू हो रहा है सुखदेव गोस्वामी के लिए? मौन, मौन, मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन बाद में फिर जो है ना, बाद में जब श्रीमद् भागवत सीख ली फिर वो क्या करते हैं, फिर हमेशा बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी हमेशा श्रीमद् भागवत ही बोलते रहते हैं, श्लोक हमेशा गाते रहते हैं श्रीमद् भागवत। और भागवत महात्म्य आता है कि जब नारद जी ने फिर जब श्रीमद् भागवत श्रवण किया था चार कुमारों से, तो उसमें फिर सुखदेव गोस्वामी जब आए तो श्रीमद् भागवत श्लोक मधुर स्वर में गाते हुए आए, फिर वो मौन नहीं रहते थे, वो हमेशा बोलते रहते। और कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी हैं, कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी हैं, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत श्लोकों को हमेशा गाते रहते हैं। और श्रीमद् भागवत श्लोकों में भगवान के नाम भी हैं, भगवान का रूप भी है, भगवान के गुण भी हैं, भगवान की लीलाएं भी सब हैं, खाली नाम नहीं है। जो असली कीर्तन है वो ये है, जिसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ है, होता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौणता सीताराम भस्म हनुमान की जय।
गौर हरे, गौर हरे। Ram Hare Hare।
Hare Hare.
राम हरि जय 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 हो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम